वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से अब वक्त हुआ है हमारे स्पेशल रिपोर्ट का। आज हमारे मेहमान भी बेहद स्पेशल हैं। हम आपकी मुलाकात इनसे करवा चुके हैं, लेकिन जिस तरह ये काम करते हैं लगता है बार बार आप इनसे मिल सकेंगे। चलिए अब और सस्पेंस में नहीं रखते, आइए मिलते हैं आज के खसूसी मेहमान से। आप हैं मुमताज हुसैन, ग्राफिक डिजाइनर, बड़े बड़े इदारों के आर्ट डायरेक्टर रह चुके हैं, पेंटर हैं, बड़े बड़े म्यूजियम्स में इनकी पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, कहानीकार हैं, गोल अनेक के पीछे से लफ्जों में तस्वीरें, किताबें इनकी, कई कहानियां, कई मौजूआत इनके पेश नज़र हैं। हॉलीवुड के स्क्रीन प्ले कॉम्पिटिशन में करीब 7,000 स्क्रिप्ट में से मुमताज हुसैन के लिखे स्क्रिप्ट अ काइंड एग्जीक्यूशनर को चौथा इनाम मिला, और अब ताज़ा तरीन और बेहद कामयाब फीचर फिल्म आर्ट इक्वल्स टू लव स्कर्ड।
What can I do for you?
You can find out who killed Isabella.
पहले तो नामी फिल्म का बेहद मुनफरिद क्यों ना हो, ये एक मुमताज हुसैन फिल्म है। आइए इन्हीं से ये सारी बातें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज साहब।
वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बेजद फॉर हैविंग मी एट द वॉइस ऑफ अमेरिका।
वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। आई नो दैट हाउ बिजी यू आर। तो चलिए मुमताज साहब, न्यूयॉर्क के एक सोल्ड आउट थिएटर में आपकी फिल्म मैंने खुद देखी। लोगों को कुर्सियों पर जगह नहीं मिली तो वो फर्श पर बैठ गए, और बड़ी तादाद वापस भी हो गई क्योंकि टिकट थे ही नहीं। क्या जादू था इस फिल्म का, कुछ बताइए मैं सुनने वालों को।
देखें, जैसे अभी आपने फिल्म का नाम लिया है आर्ट इक्वल लव स्क्वायर, तो वो जो ये फार्मूला है, जब आर्ट को जब आप बराबर रखते हैं, मोहब्बत को मल्टीप्लाई करते हैं दो दफा, तो उसका जो निचोड़ है, उसका जो सत्य है, वो एक मास्टर पीसेज लेके निकलता है। वही चीज जो है, वही एसेंस, वही उसकी रूह इस मेरी फिल्म में है कि जब आप कोई चीज दिल से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, लगन से करेंगे, तो चीज तो फिर अच्छी निकलेगी ना। तो इस चीज को सब समझते हैं, सब देखते हैं कि एक आर्टिस्ट जो है वो किस तरह, उसका जो प्रोसेस है थिंकिंग, और वो कैसे सोच के अपने कोई मोहब्बत को ढूंढता है, और वो पेंटिंग के थ्रू से ढूंढता है। तो ये सब्जेक्ट मुझे लगता है कि लोगों को बहुत इंस्पायर किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी कम्युनिटी का, अपने दोस्तों का, और लोग मुझे नहीं भी जानते थे तो वो भी आए देखने, क्योंकि फिल्म को 7 अवार्ड मिल चुके हैं इंटरनेशनली, और काफी फेस्टिवल्स में सराही जा रही है, तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इसकी सक्सेस से और आप
पजीराई से। अच्छा, फिल्म के बाद जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो कई लोगों का ख्याल था कि आपकी बनाई हुई फिल्मों में स्पिरिचुअलिज्म का रंग बेहद नुमाया है, सूफीज्म कह लीजिए, थोड़ा तसव्वुफ कह लीजिए, उसका रंग बेहद नुमाया है। मुझे भी नजर आया, जाहिर है कि जिस तरह आर्टिस्ट आप अभी बता रहे थे फिल्म में अपनी खोई हुई मोहब्बत को तलाश करता है, उसमें बहुत सारा ये रंग नुमाया था, और ये सवाल बहुत दफा आपसे पूछा भी गया है। मेरा सवाल यह है कि इतनी भागती दौड़ती तेज रफ्तार अमरीकी जिंदगी में ये स्पिरिचुअलिज्म, ये धीमेपन का ये रुझान कैसे आपकी फिल्मों में, कहाँ से आया?
देखें, एक तो स्पिरिचुअलिज्म को अब अब्यूज करना शुरू कर दिया गया, अब ये एक फैशन बन गया स्पिरिचुअलिज्म। ड्राइंग रूमों में जो कन्वर्सेशन होना, ये एक फैशन है चला हुआ है कि स्पिरिचुअलिज्म पे बात की जाए, या पॉलिटिकली भी इस्तेमाल किया जाता है। वो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा, मेरी इंक्लिनेशन टूवर्ड दिस सब्जेक्ट कि जो खुद ब खुद ही निकल के आना शुरू हो जाती है कि स्पिरिचुअलिटी, मेरा एक तो तल्लुक झंग से है, और झंग गहवारा है सूफियों का, हर पांचवें मील पे एक सूफी का दरबार है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कोई उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली या बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, वो जो थ्रू द एक्सपीरियंसेस जो मेरे उस एरिए का जो तजर्बे हैं, या जिस तरह हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, उस टोटली हम लोग ग्रू अप ही स्पिरिचुअलिटी में होते हैं। और वो जब जिस चीज में मैं पला बड़ा हूं और बड़ा हुआ हूं और मैंने चलना शुरू किया है, तो वो मेरे जो एक्शन है, मेरे जो अतवार है, मेरे जो तरीके हैं, उनमें स्पिरिचुअलिटी वैसे ही खुद बहुत समो जाती है, और वो मेरी उंगलियों में से निकलना शुरू कर देती है, चाहे वो लफ्ज हो और चाहे वो रंग हो।
अच्छा मुमताज साहब, आपकी ये फिल्म चूंकि मैंने खुद देखी उसी थिएटर में, और पूरी दयानतदारी से अपने सुनने वालों को मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक इंतहाई ब्रिलियंट इंटेंस लव स्टोरी है, जिसका ख्याल बड़ा मुश्किल था और जिसको इंतहाई खूबसूरती से आपने जिंदगी दी। क्या सबसे अहम बात आप समझते हैं जिसने इस फिल्म को बेहद दिलचस्प बना दिया? आप बड़े फिल्म मेकर हैं, उस हिसाब से बात कीजिए।
जो यूनिक करती है ये फिल्म बाकी फिल्मों से, यानी कि कहानी तो वही होती है, इमोशंस तो वही होते हैं, लेकिन एक तो रिलेशनशिप है आर्ट और मैथमेटिक्स का, ये एक बहुत ही साइंटिफिक, वेरी ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही कैलकुलेटेड चीज जो है, उसके ताने बाने में जब मैं पंजाबी में बात करूंगी कि ताना पेटा जो होता है, जब एक फैब्रिक आप बना रहे होते हैं तो उस फैब्रिक में जब आप मोहब्बत और स्पिरिचुअलिटी को ऑर्गेनाइज करके उसका एक फैब्रिक बुनते हैं तो उसका जो कैनवस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। उसमें उसके जो रंग हैं, उसकी जो तस्वीरें हैं, उसका जो मुशाहिदा है, उसके जो तजुर्बात हैं, वो एक बहुत ही यूनिक सा रंग देता है। लेकिन स्टिल उसके जो इमोशंस हैं या खोए हुए मोहब्बत को ढूंढने का एक जो तरीका कार है, जब भी जो शर्लाक होम के मुहद्दब अस्से से माइन्यूट चीजों को देखने की बजाय अगर तस्वीरें या पेंटिंग्स जो हैं वो रास्ता दिखा रही हों और वो छुपे हुए जो राज हैं उनमें से पर्दा उठा रही हों, तो जबकि वो कोई एक सुपरस्टिशियस चीज मैंने नहीं दिखाने की कोशिश की, ये इंसान के जहन की जो मुख्तलिफ तहे हैं, जो लेयर्स हैं, जो कि उसकी हिस्ट्री, उसके गुजरे हुए अच्छे, उसके जो वक्त थे उनको वो साथ जोड़ जोड़ के जब वो मोहब्बत के रास्ते ढूंढता है तो वो जाके अपने महबूब को मिल लेता है या ढूंढ लेता है। थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका था और फिर उसमें सस्पेंस जो है बिल्कुल शर्लाक होम और अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों वाला लगता है, और साइकोलॉजिकल जो उसकी थ्रिलर है रास्ते ढूंढने में बहुत ज्यादा मदद करता है, इससे मोर लाइक ए साइंटिफिक, ये उसका जो एसेंस है विच इज अनलाइक द अदर फिल्म या वो मुख्तलिफ या यूनिक करता है बाकी फिल्मों से। तो मेरे ख्याल में ये चीज लोगों को बहुत पसंद आई है, इसलिए सराही जा रही है।
अच्छा मुमताज साहब, एक बात बताइए, आपके मुताबिक आपसे जब बात भी हुई, आपकी ये फिल्म बड़े महदूद रिसोर्सेज के साथ बनी, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लेकिन इसमें हॉलीवुड के इंतहाई मुमताज नाम हैं, जैसे रॉकी वन, रॉकी टू फिल्मों के एडिटर क्रिस होम्स का नाम आपकी फिल्म के साथ जुड़ा है, कंपोजर यानी मौसीकार जो डेलिया हैं, इंतहाई मारूफ स्टूडियोज न्यूयॉर्क के साउंड ट्रैक के मालिक जॉन कील, ये आपके फिल्म के साथ एसोसिएशन रखते हैं, एसोसिएटेड है नाम इनका आपकी इस फिल्म के साथ जुड़ा है, किस तरह से?
बहुत अच्छा सवाल किया कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास फंड्स नहीं थे, तो जब मैं सबसे पहले जॉन कील से मिला उसके ऑफिस में जाके, मुझे साउंड करना था क्योंकि वहां पे मार्टिन स्कॉर्सेसी की फिल्में, उनका साउंड होता है, और जब मैं फिल्म लेके गया तो उस वक्त उनको स्टूडियो में किंग स्पीच हो रही थी, और इस तरह की बड़ी बड़ी फिल्में जिनको ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं वो हो रही थी, तो मैं तो वैसे घबराया हुआ था कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, पता नहीं मुझे बाहर ही निकाल देगा। जब उसने फीस सुनाई तो मैंने उसे कहा नहीं, मैं ये तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ही वॉज वेरी नाइस, उसने मुझे कहा कि इसकी कहानी क्या है। जब मैं कहानी सुनाने लगा तो लव्स, जब दो करेक्टर हैं, एक आर्टिस्ट है दूसरा मैथमेटिशियन है, और वो जो मैथमेटिशियन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मास्टर कर रही है, तो वो शी इज अ बाइपोलर डिसऑर्डर, तो वो मेडिकेशन लेना छोड़ देती है और वो अपने आप को हुक करती है कि मैं अगर इस सेंचुरी की सबसे डिफिकल्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगी तो मेरे जो जहन में ये नॉट बंधी हुई है वो खुल जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। वो जो इक्वेशन है वो है रे मैन हिप्नोसिस। जब मैंने रे मैन हिप्नोसिस का नाम लिया तो खुशकिस्मती कि वो जो उसका ओनर है, ही इज अ जीनियस मैथमेटिशियन, वो साउंड को कैलकुलेट करता है, साउंड की रेजोनेंस की कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट होती है और फिर उसके ऊपर वो साउंड की वाइब्रेशन देता है, तो उसकी जो कंपनी इसीलिए डिफरेंट है। तो जब उसने ये सुना तो उसने ऑलमोस्ट 15 मिनट रे मैन हिप्नोसिस पे ही मेरे से बात की, तो उसने मुझे पूरा स्टूडियो दे दिया, उसने कहा तुम इस तरह की यूनिक फिल्म कर रहे हो और तुम्हारा स्क्रिप्ट जो है वो मुनफरिद है, तो मैं तुम्हारे से पैसे नहीं लूंगा, सिर्फ तुम टेक्नीशियंस को जो है ना वो थोड़े बहुत पैसे दे देना, उनको तुम कंपनसेट करना, मेरा स्टूडियो तुम्हारे लिए फ्री है। यही हाल जो है क्रिस होम के साथ हुआ। क्रिस होम डॉनी ब्रॉस्को और पैट्रियट और मेल गिब्सन की फिल्में करता है और 100 मिलियन से नीचे के बजट की फिल्म को वो उठाता ही नहीं है, तो जब उसने मेरा स्क्रिप्ट पढ़ा और स्क्रिप्ट देखा तो उसको बहुत पसंद आया। तो फिर ये भी है कि कुछ लोग जिस तरह मैं दिल के लिए अपनी रूह को सेटिस्फाई करने के लिए मैं ये फिल्म कर रहा था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन एक जुनून था, वो जुनून को लेके आगे बढ़ रहा था, तो उन्होंने भी शायद, एक आर्टिस्ट जो है वो आर्ट की कदर करता, तो उन्होंने भी ही एक्सेप्टेड मी, मेरे सीने से लगाया, मेरे से कोई पैसा नहीं लिया और उन्होंने इस फिल्म को एडिट किया। इसी तरह जो डालिया ने इतने खूबसूरत गाने लिए इस फिल्म में, अगर दो तीन मिनट हो तो प्लीज उनका कोई गाना सुना दें या उनके कोई डायलॉग फिल्म के सुना दें, या अगर मौका है, नहीं है तो कोई नहीं फिर।
जी बिल्कुल, मैं तो ये फिल्म देख चुकी हूँ मुमताज साहब, और इसकी सारी फिल्म का म्यूजिक जो है बे इंतहा खूबसूरत है, जो मैंने आपसे दरख्वास्त भी की थी कि इसके गीत मुझे अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए इस वक्त हम आपको मुमताज हुसैन की इसी फिल्म जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सौती झलक सुनवाते हैं।
Remember, there's no right or wrong answer. Simply tell me what image you see.
Two seahorses.
Isabella!
Do you think of art as more of a sensorial experience or a psychological one?
I don't know.
Dean, what do you see?
She's communicating to me through my art. You think I killed her?
I'm already dead.
मुमताज साहब, ये आपकी फिल्म की सौती झलक हमने अपने सुनने वालों को सुनवाई। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे अब ये है कि आपका स्क्रिप्ट द काइंड एग्जीक्यूशनर, जिसको हॉलीवुड का एक बड़ा एहसास मिला, एक पाकिस्तानी अमेरिकन के हवाले से और पूरी कम्युनिटी के लिए हमारे लिए ये एक एजाज की बात है, इस स्क्रिप्ट के बारे में अब आपकी आगे प्लानिंग क्या है?
स्क्रिप्ट को बहुत सराहा गया, यानी कि इतना बड़ा कंपटीशन था जिसमें मेरे मुकाबले में हॉलीवुड के टॉप के राइटर्स थे, जिनमें वन ऑफ द मास्क ऑफ जोरो जिसने लिखी है, इस तरह के बड़े बड़े राइटर थे। मुझे कॉल आई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा जो स्क्रिप्ट है वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा। कोशिशें पूरी कर रहा हूँ कि किसी तरह फंड इकट्ठे कर लूँ, क्योंकि ये फिल्म मैं बहुत अच्छे तरीके से करना चाह रहा हूँ, और एक पॉलिटिकल ड्रामा है, एक 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 पाकिस्तान की कहानी है जो मैं पूरी दुनिया में को रोशनास कराना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान कितने इंटेलिजेंट लोग इस मुल्क में हैं, ना कि टेररिज्म और इस तरह की जो बातें जो हैं वो सरफेस पे आती हैं और हेडलाइंस बनती हैं, उसकी लेयर जो छुपी हुई है, उसकी हिस्ट्री जो है, उसकी तारीख की जो, उसकी जो पॉलिटिकल पाकिस्तान का जो रोमांटिक ईरा है, रोमांटिक ईरा ऑफ पाकिस्तान, उसको मैं लाना चाह रहा हूँ जब पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में उस ईरा में उभरा था, इस्लामिक दुनिया में इसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस थी। इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरी कोशिश में हूँ कि कहीं से फंड्स मिल जाए तो इस फिल्म को अच्छे तरीके से निभा सकूँ और कर सकूँ, और जस्टिस और इंसाफ मैं अपने आर्ट के साथ करना चाह रहा हूँ, ताकि अपने ऑडियंस को, अपने मुल्क के लोगों को, पूरी दुनिया के जो देखने वाले हैं उनको डिसअपॉइंट ना करूँ। पूरी मेहनत से और पूरी लगन से ये एक अच्छा सब्जेक्ट ला के मैं पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में, ताकि उसको अच्छे लफ्जों में याद किया जा सके।
विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज हुसैन हमारे साथ थे, एक बड़ा नाम। मुमताज साहब, आपका बेहद शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से आज के मौजू की स्पेशल रिपोर्ट में वक्त देने का। आई एम रियली रियली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल।
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
बहुत बहुत शुक्रिया।
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।